Thank you. جل ہوں سیان پوجوں گے ستت کیول جان پانے پوجوں گے ستت کیول جان پانے. बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की. हम सभी लोग अपने और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से धर्म का प्रवर्तन करने में समर्थ तीर्थंकर के जैसे जीवन को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं और पिछले दिनों हमने उन भावनाओं पर विचार किया है जिन भावनाओं की मदद से कोई भी जीव उस महान पद को प्राप्त कर सकता है. जीवन हमारा हम बनाते हैं, हम ही बिगाड़ते हैं. कोई और हमारे जीवन को बनाने बिगाड़ने वाला नहीं है. हमारी भावनाएं हमारे जीवन को ऊंचा भी उठा सकती हैं, हमारी भावनाएं हमारे जीवन के पतन में भी कारण बन सकती हैं. सीढ़ी एक ही होती है, कोई चाहे तो उसकी मदद से ऊपर भी पहुंच सकता है और कोई चाहे तो फिसल कर नीचे भी गिर सकता है. सीढ़ी न ऊपर भेजने के लिए है न नीचे गिराने के लिए है. हमारी दृष्टि, हमारी भावना, हमारा पुरुषार्थ जैसा होगा उसके अनुरूप ही हमारा जीवन भला या बुरा बनता है. ये बात हम सब लोग बहुत अच्छे से समझते हैं और इसी वजह से हम अपनी भावनाओं को अच्छा बनाने के लिए, ताकि हमारा जीवन अच्छा बन सके, रोज प्रयत्न करते हैं. कलयुग में बहुत जीवन को अच्छा बनाने का आसान उपाय है सत्संग और सेवा. अज्ञानी अर्थात शब्द ज्ञान जिसके पास नहीं है, ऐसा निरक्षर व्यक्ति भी, दीनहीन व्यक्ति भी, दरिद्र व्यक्ति भी, कहने का आशय यह है कि प्राणी मात्र ये सिर्फ किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष की बहौती नहीं है कि वही इस तरह की भावनाएं भा सकता है. यह तो दृष्टि की निर्मलता से संपन्न जो भी जीवात्मा है वो इस भावना को भा करके संगति और सेवा के माध्यम से भी अपने जीवन को अच्छा बना सकता है. बहुत मुश्किल है वर्तमान में साधु की संगति मिलना, सज्जन पुरुषों की संगति मिलना. उससे ज्यादा कठिन है साधु पुरुषों की सेवा का भाव होना और उससे भी ज्यादा कठिन है सेवा का अवसर मिलना. साधुओं का सामीप्य मिलना कठिन, उनकी सेवा करने का भाव होना और कठिन. सेवा का भाव होने पर भी सेवा का अवसर मिलना और ज्यादा कठिन. ऐसी यह सत्संगति और सेवा है जो कि जीवन को अच्छा बनाने में आसान सा उपाय है। आचार्य भगवंतों ने लिखा है, दुख उपनिपाते तत अपहरणम वैयावृत्यम गुणवत्। गुणवान पुरुषों की उनके ऊपर शरीर और मन पर आने वाले जो भी दुख है, पीड़ा है, उसके निवारण के लिए जो किया जाता है निर्दोष विधिना, अत्यंत निर्दोष विधि से, वो कहलाती है भैया व्रत या की सेवा। ये सेवा और भैया व्रत की जो भावना है वो भी तीर्थंकर जितनी ऊंचाई देने में मदद करती है। श्री कृष्ण जी के बारे में अत्यंत प्रसिद्ध जनश्रुति है कि वे आगामी जीवन में तीर्थंकर पद प्राप्त करेंगे। उसका कारण लिखा गया है कि मुनि महाराज की भैया वृत्ति के फल स्वरूप उन्हें यह पद प्राप्त होगा। जब मुनि महाराज को शारीरिक व्याधि हो गई और श्री कृष्ण जी उनके दर्शन के लिए गए, तब देख करके मन में बहुत भावना उत्पन्न हुई कि क्या करूं इनके रोग के निवारण के लिए। तब वैद्य से कहकर जो भी उपचार की विधि थी वो जानकर जितने चौके थे सब में औषधि लेकर के और स्वयं औषधि दान करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने जो विशुद्धि हासिल की जिससे कि आगामी समय में वे तीर्थंकर बनेंगे, ऐसा आगम में उल्लेख मिलता है। यह भैया व्रत तत्वी है। यह भैया व्रत एक श्रावक का कर्तव्य भी है और यह भैया व्रत की भावना तीर्थंकर पद को पाने में कारणभूत 16 कारण भावनाओं में से एक भावना भी है। इतनी महत्वपूर्ण चीज है यह सेवा। सामान्य रूप से सेवा तो सभी की जाती है। जिसकी सेवा करेंगे उसके ही जैसे बनेंगे। रागी दोषी की सेवा करेंगे राग दोष बढ़ेगा, वीतरागी की सेवा करेंगे वीतरागता बढ़ेगी, संसार की सेवा करेंगे शरीर की सेवा करेंगे संसार मिलेगा शरीर मिलेगा, और अपने आत्मा की और दूसरे के आत्मा की सेवा करेंगे तो आत्मोन्नति होगी। बहुत सीधा सा गणित है, कहीं कोई इसमें ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमें तय करना पड़ेगा कि सेवा किसकी की जाए, सेवा कैसे की जाए, किन भावों से की जाए, किस विधि से की जाए। ये भर समझने की चीज है। सेवा सब करते हैं, पूरी जिंदगी निकल जाती है शरीर की गुलामी और सेवा करने में सबकी। सुबह से शाम तक नहलाने धुलाने खिलाने सुलाने और सजाने में ये जीव इस शरीर के लिए सारे प्रयत्न करता रहता है, सेवा ही तो कर रहा है। शरीर से आने वाली दुर्गंध को दूर करने का तो सब उपाय करते हैं, लेकिन अंतरंग में जो चेतना में दुर्गंध भरी हुई है राग द्वेष विषय कषाय की, उससे निवृत्त होने का जो उपाय करता है वास्तव में सेवा वो करता है। शरीर के रोग दूर करने के लिए जो औषधि उपचार किया जाता है वह सेवा भी सेवा कहलाती, ऐसा नहीं समझना। लेकिन वास्तव में सेवा तो वो कहलाएगी जिसमें कि हम मन में पड़े हुए विकारी भावों को हटाने के लिए, शरीर के विकार दूर करने के लिए जैसे हम दूसरे की सेवा शुश्रूषा करते हैं, ऐसे ही मन में पड़े हुए अपने और दूसरे के विकारी भावों को हटाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है वास्तव में सेवा तो वही है। ऐसी ही सेवा बैया व्रत कहलाती है और जिससे हमारे जीवन में विशुद्धि बढ़ती है, हमारा जीवन अच्छा बनता है। बैया वृत्ति किसकी की जाए तो गुणवान की जाए। कैसे की जाए तो निर्दोष विधि से की जाए। क्यों की जाए? अपने मन की प्रसन्नता के लिए की जाए और काय के लिए की जाए। सीधी सी बात, जो सज्जन पुरुष है गुणवान है, कल हमने समझा था कि सज्जन पुरुषों पर गुणवान पर अगर कोई विघ्न उपसर्ग उपस्थित होता है तो हम उसे दूर करें। वह साधु समाधि है लेकिन उनके शरीर और मन में आने वाली विकृति को दूर करने के लिए जो निरंतर सेवा की जाती है वो भैया वृत्ति। जरा सा अंतर है। तपस्या में आने वाले विघ्न को दूर करना और तपस्या को के अनुकूल वातावरण बनाना, ये साधु समाधि। और शरीर और मन में उत्पन्न होने वाली जो भी दुख या पीड़ा है उसको दूर करने के लिए जो सेवा की जाती है वो भैया व्रत कहलाती है। पर दोनों में ही अनिवार्य है कि सेवा तो साधु और सज्जन पुरुषों की ही की जाए। ग्राम सेवा, गो सेवा, देश सेवा, जन सेवा, सेवा के कई रूप हैं। उनमें से सबसे श्रेष्ठ है तो सज्जन पुरुषों की सेवा ही श्रेष्ठ है। और उद्देश्य भी बहुत स्पष्ट होना चाहिए और विधि भी अत्यंत निर्दोष होनी चाहिए। साधु जनों के सेवा करते समय ये ध्यान रखा जाए कि उनकी साधुता बढ़ाने में कारण बने वो सेवा। ऐसा ना हो कि उनकी साधुता में शिथिलता आ जाए। यह वर्तमान में श्रावक का कर्तव्य है लेकिन श्रावक ऐसा करना पसंद नहीं करता, यह भी देखने में आता है। श्रावक तो यह चाहता है कि हमारे सिर पर आप रखो पीछे और हमारा काम अटके सो हमसे करो दो बातें और हमें दो मंत्र, और तुम्हें जैसो करने उसो करो, सौ में हो तो सो, रसगुल्ला खाने सो खाओ, मोबाइल पे बात करने सो करो, तुम्हें जो करने दो करो, हम का करने, हमें तो बस इतना कर दो कि हम आवे सो पांव कर लें दो अच्छे से और हमसे प्रसन्नता से दो बातें कर लो, मुंह पे हाथ धर दो और तुम्हें जो करने वो कर लो, और अगर तुम हमें ये नहीं करने दोगे तो हम बाहर खड़े होकर तुम्हारी छीछालीदारी करेंगे। ये श्रावक का आज का वर्तमान का चेहरा है। अब ऐसी स्थिति में बताइए कौन विरला होगा जो सज्जन पुरुषों की सेवा निर्दोष विधि से करेगा। जितनी शिथिलताएं हैं उसका मुख्य कारण है श्रावक की अपनी स्वार्थ वृत्ति। सेवा का जो नजरिया था वो बदल गया, सेवा का ढंग बदल गया, सेवा करने के पीछे छिपी हुई निर्मलता खत्म हो गई, स्वार्थ परखता आ गई। उसी से प्रसन्न है जिससे हमारा स्वार्थ सरता है, जिससे मोक्ष मार्ग की दो बातें मिलती उससे उतनी प्रसन्नता नहीं होती। ये बहुत विचार करने की चीज है कि सेवा उसी तरह से की जाए जिससे कि सज्जनता बढ़े, अपनी भी और दूसरे की भी, शिथिलता बढ़े, ऐसा नहीं। अनुकूल वातावरण देने का मतलब ये नहीं है कि डनलप के गद्दे पर और बढ़िया से और आहार में भी बढ़िया से आइसक्रीम और आहार में भी बढ़िया से जो है और भी चीजें जो कि इंद्रिय संयम में कारण नहीं है, वे चीजें भी देखता रहता हूं, सुनता रहता हूं। इसलिए कहने में मुझे कोई, क्योंकि ये सब करने वाले लोग सामने बैठे हुए, सेवा का भाव है हमारा, इसलिए जरूरी है कि सेवा निर्दोष हो, निर्दोष विधि ना गुणवत्। दुख उपनिपाते तद अपहरणम वैयावृत्यम, ये आचार्य भगवंतों का सूत्र है। उसके अनुरूप ही जब कोई वैयावृत्ति करता है तब अपने और दूसरे के कल्याण में निमित्त बनता है। एक व्यक्ति, सन 1975 की बात है, आचार्य महाराज पन्ना आए थे वहां से, 18 दिसंबर को 75 को दीक्षाएं संपन्न करके सोनागिर से और छतरपुर, खजुराहो, पन्ना, देवेंद्र नगर होते हुए सतना और कटनी, उसके बाद आए थे। 1976 में प्रवेश हुआ था बुंदेलखंड में, पहला चतुर्मास कुंडलपुर का, तब की बात है। कटनी में अत्यंत अस्वस्थ हो गए। अस्वस्थता का कारण था कि बहुत अधिक गर्मी और गर्मी के साथ मच्छरों की बाधा। अब क्या उपाय है? तो वहां जो पंडित जी थे उन्होंने क्या सोचा कि महाराज तो कछु ने पंखा चलांग दे, ने हवा करण दे, औषधि इत्यादि के लिए भी पता लग जावे तो, क्योंकि औषधि इत्यादि पताने लगे जैसे हो कैसे सकत। अब तो सब चीजें जो सेवा की है पता लगा के करी जा कि हम दे रहे, हम ले रहे थे, हम सेवा कर रहे नहीं, पता लग जाने पर सेवा स्वीकार नहीं करते, क्योंकि सेवा करने वाले को अगर अहंकार है सेवा करने का तो उसकी सेवा उसके और सामने वाले के दोनों के अकल्याण में कारण बनेगी, कल्याण में कारण नहीं बनेगी। नहीं लेते आचर्षी पता लगने पर। अब उसी स्थिति में क्या करें? तो जब आचर्षी विश्राम करने के लिए लेट गए तो पंडित जी ने पहले से तैयार करवा रखी थी पूरे कमरे के नाप की मच्छरदानी, लगवा दी, बांधना थी और क्या। आचर्षी पाटे पर बीच कमरे में लेटे हुए थे और उन्होंने धीरे से जो है पकड़ के चारों कोने पर बांध दी। इतनी बड़ी थी वो कि उसमें बैठ जाओ, आचर्षी सामायिक भी कर ले, लेट भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे टच भी नहीं होगी। किया तो खैर उन्होंने बहुत, मैंने विचार तो किया उन्होंने। अब सुबह जब आचार्य महाराज उठे तो देखा वो चुपचाप अपने सामायिक में लीन हो गए। अब क्या मान करके कि जब तक ये उपसर्ग नहीं टलेगा तब तक ध्यानारूढ़ ही रहूंगा। पंडित जी ने वो अलग करवाई, महाराज के पास आके बैठे और महाराज ने कहा क्या बात है पंडित जी, जब सब सामान्य हो गया तो बोले महाराज अब ऐसा है कि आपको तो अपनी तपस्या करना है और आपका शरीर हो गया है इतना ज्यादा विषैला कि आपको मच्छर काटते थे सो भी मच्छर मर जा सो उनकी रक्षा के लिए हमने मच्छर धनु जला दिया। हाँ देखो आचार्य जी बहुत हंसे और उन्होंने एक ही बात कही कि पंडित जी तर्क तो आपका सही है लेकिन ये मोह के वशीभूत होकर शिथिलता का कारण बनेगा, इसलिए आगे से ऐसा न करना। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को अत्यंत वृद्धावस्था के कारण पाटे पर लेटने में पाटा गड़ता था, गड़ेगा ही, हाथ लगा करके वो अपना विश्राम करते थे। तो कजोड़ी मल जी ने आकर के एक दिन एक लकड़ी की ऐसी ऊंची सी तकिया जैसी लकड़ी की बनवा करके सिरहाने रख दी। आचार्य ज्ञान सागर जी ने उसको स्वीकार तो नहीं किया। जब कजोड़ी मल जी आए तो उनसे बोले कि कजोड़ी मल जी, तुमने जो सिरहाना रखा है बहुत गड़ता है भैया, इस पे तो मखमल लगवा दो। मतलब ये प्रच्छन्न छिपा हुआ व्यंग था, शिक्षा थी कि आगे से ऐसा मत करना। ऐसी सावधानी रखने वाले साधक की अत्यंत निर्दोष विधि से सेवा करने वाला स्वयं भी तर जाता है और ऐसी साधना करने वाला भी संसार से पार हो जाता, नहीं तो दो ही डूब जाते। इतनी सावधानी की आवश्यकता है भैया व्रत करते समय। सन 1980 में या 81 में चतुर्मास था नैनागिर का, उस समय वहीं पर पटेरा से एक व्यक्ति साइकिल से आते थे 4 किलोमीटर सेवा करने के लिए, बड़ी भावना उनकी, और फिर पैर दबा रहे थे। थोड़ी देर हो गई, उनका तो मन और था कि अच्छा तेल वगैरह लगा के महाराज की सेवा कर दें। हमने उनको इशारा किया कि बस अब हो गया। दूसरे दिन आकर बोले कि महाराज आप अच्छे से ऐसे ऐसे करवाओ तो उनसे ही कछु ढंग से होते ही नहीं है सेवा आपकी, आप अच्छी करवा लेंगे तेल लगवा के। हमने कहा, उनको इतने ही जवाब दिया कि आपकी सेवा से मेरी 2 मालाएं अगर मनोकार की ज्यादा हो तो आपकी सेवा सार्थक, और आपकी सेवा के बाद और हमें आलस आ जाए और हम सो जाएं तो आपकी सेवा व्यर्थ। ये सेवा का निर्दोष उपाय है, ऐसा ही करना जिससे कि साधक की साधना घटे ना बढ़ जावे। सेवा का उद्देश्य यही है, सेवा कराने वाले का और सेवा करने वाले का, दोनों का इतना ही। और मन कैसा हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, गदगद हो जावे। वास्तव में जब हम किसी की सेवा करते हैं, निर्दोष विधि से सेवा करते हैं, तो मन में कषायों में मंदता आए बिना नहीं रहती, देश भाव घटता है और निर्मलता आती है। कोई व्यक्ति कितना भी आपसे शत्रुता रखे होवे और उसके ऊपर कोई दुख आए और आप जाकर के इतने ही कह दो कि काय भाई, हमने सुना कि आप को व्याधि हो गई। आपने ये भी नहीं कहा कि मैं आपका क्या उपचार करूं, सिर्फ इतना ही पूछ लिया, वह भी उसके लिए मन की प्रसन्नता देने वाला है और आपके मन को भी हल्का करने वाला है। अकेले शरीर की सेवा नहीं भैया, साथ में मन में उठने वाले विकारी भावों को भी शांत करने का जो उपक्रम है वो भी सेवा में शामिल है। मन में प्रसन्नता आनी चाहिए सेवा करने से, करने वाले की भी और कराने वाले की। इसके लिए एक बहुत प्रसिद्ध सा उदाहरण है, अब उनका नाम हमें नहीं मालूम है, तो बहुत प्रसिद्ध याद नहीं रहता, वर्णाश शाह का है या इसी तरह से कोई, जो भी हो, वो चले जाते थे। कोई वकील थे वो, नहीं वर्णाश शाह नहीं थे, कोई वकील थे, या जज थे, तो वो चले जाते थे अपनी गाड़ी में कोर्ट। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक सूकर का बच्चा और नाली में गिर गया है। हालांकि वो उसी में रहते हैं, लेकिन वो गिर गया था, तड़प रहा था कि निकलते नहीं बन रहा, बहुत छोटा था, जिसको कोई छूना भी पसंद नहीं करता, और अच्छे कपड़ा पहने हो गए तो लिगा से निकल वो नहीं पसंद करते हैं। और वो अपने कोट के बिल्कुल सफेद अच्छी लूहा करी कराए, कहते अपन लूहा करी कराए मैं, तो यह लूहा करी कपड़ा पहन के आ, उससे वह क्रीज खराब नहीं हो जाए, उस हिसाब से बेटर नहीं देख के, जीव में मर जाए इस दृष्टि से नहीं देखते, नीचे खराब नहीं हो जाए इस दृष्टि से देखते, जे जे शरीर की सुरक्षा है, शरीर की सेवा का भाव है। उन्होंने कार रुकवा करके कहते हैं कि उतर के अपने दोनों हाथों से उसे उठा करके बाहर रख दिया, कीचड़ लग गया, और इतने ही उसने बाहर आकर के और अपने शरीर को हिलाया, स्वभाव उसका सुसबरी कीचड़ उचट करके और उस कपड़ों पर गिरी, लेकिन फिर भी वे अत्यंत शांत हैं, प्रसन्न हैं। अपनी गाड़ी में यथावत तो बैठ करके जब कोर्ट पहुंचते हैं तो उनकी स्थिति को देख करके लोग चकित रह जाते कि क्या हुआ, आप गिर गए क्या कहीं पर। जब ड्राइवर से मालूम पड़ता है कि साहब ने एक सूकर को जो कि विपत्ति में था बचाने के लिए उपक्रम किया, जिसके फलस्वरूप ऐसी स्थिति बनी, तो लोग और चकित हुए, पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब था अपनी वेदना मिटाने के लिए मैंने ऐसा किया। उस अपने दुख को दूर करने के लिए मैंने उसकी सेवा करी। सेवा के पीछे भावना क्या है, सेवा के पीछे अपना ही उपकार करने की भावना, और वास्तव में सेवा करने वाले का उपकार पहले होता है, जिसकी सेवा की जा रही है उसका उपकार तो उसके कर्मों के अनुरूप होगा। हम दूसरे को औषधि इत्यादि देवें, दूसरे के अनुकूल जो भी स्थितियां हैं निर्मित कर देवें, इसके बाद भी उसके साता का उदय होगा, तभी उसको कुछ लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। पर हमने जो भाव बनाया है सेवा करने का, उससे लाभ तो हमें तुरंत ही मिल जाता है। इसलिए ये सेवा या भैया व्रत, जो कि आज के समय में साधु की संगति इसी के माध्यम से मिलती है, सेवा की भावना से हर आदमी चाहता है कि मुझे संगति मिले, संगति मिले जी तो नहीं चाहता, आपने तो किया था ही, आपसे चाहता तो ये है कि हमें पास जा भी मिले, कन्ने धन्ने कछु नहीं, अकेले बस बाहर निकले सुजा कह सकें कि हम सुई महाराज के पास होके आए, का समझत हमें अपने आप। हाँ, बहुत स्पष्ट सी बात कहता हूं, सबके मन में एक ही, हमें सेवा करनी है, हमें उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लेनी है, ऐसा तो बहुत थोड़े लोगों के, हमें अपनी श्रद्धा व्यक्त करनी है ये तो बहुत कम लोगों के, हमें तो अपना काम बनाऊ ने ये हमेशा भाव रहता है। इसलिए भैया जब भी इसकी चर्चा आती है तो मुझे लगता है कि अभी तो अपन को भैया वृत्ति जो श्रावक का कर्तव्य है, जो मुनि जनों का तप है, और जो 16 कारण भावना में भैया व्रत रखा गया है, उसका अंश भी अपने पास में नहीं है, अपने उपादान में इतनी कमी है, इतनी कमजोरी है कि हम सब जानते हुए भी अपने इस धर्म का निर्वाह ठीक से नहीं कर पाते हैं। हमारे भीतर कहीं ना कहीं कलुषता, अहंकार या कि कोई स्वार्थ बैठा ही रहता है। हमें उन सब विकारी भावों को अपने हटा करके फिर इस भैया व्रत का और सेवा का अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसी सेवा जिससे कि दूसरे का भी जीवन अच्छा बन सके, और अपना जीवन भी अच्छा बन सके, ये तो बिना श्रद्धा और करुणा भाव के हो ही नहीं सकता। दो मित्र थे, जीवन में बहुत समय तक दोनों जो है वो एक ही विद्यालय में पढ़ते रहे, फिर अलग अलग अपने घर चले गए। घर चले गए तो उसमें से एक तो जो है साधु संगति में पहुंच करके सज्जन पुरुष हो गया, और धीरे धीरे सज्जनता इतनी बड़ी कि उसने साधु जीवन ही अंगीकार कर लिया, जंगल में अपनी कुटी बना करके रहने लगा। उसको एक दिन मालूम पड़ा कि उसका वो मित्र जिससे उसे बहुत प्रेम था वो तो बुरी खोटी संगति में पड़ करके और डाकू हो गया। अत्यंत दुखी हुआ, लोगों से पूछता कि कहाँ मिलेगा, लोग कह रहे कैसी बात करते हो, कहाँ मिलेगा, कोई को खबर तक नहीं लगती कि कहाँ मिलेगा, लग जाए तो पकड़ में नहीं आ जाए, हम कौन बता देंगे कि कहाँ मिलेगा। उसने कहा मैं ही ढूंढूंगा, मेरा मित्र है, अब बताओ। अब जंगल में घूमता फिरता है, कोई दूर दिखाई पड़ता है तो आवाज देता कि क्यों भाई, क्या तुम ही तो नहीं हो मेरे मित्र। एक दिन ऐसा हुआ कि जंगल से जाता था तो सामने से बंदूक कंधे पर रखे और कोई चला आता था सामने से, घोड़े पर बैठा हुआ था, दूर से लगा कि यही मेरा मित्र है। जब वो पास में आया तो स्पष्ट हो गया कि यही मित्र है, तो उससे पूरे मित्र के ही लहजे में कहा कि अरे तुझे शर्म नहीं आती मेरा मित्र होकर ऐसा खोटा काम करता है। वो जो डाकू था वो आवाज से पहचान गया कि मेरा ही मित्र है, कुछ नहीं बोला और अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे चला गया। इसने कहा कि ये तो एक मौका था, मैं चूक गया, फिर मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। अब की बार कुछ दिन के बाद ही फिर से मिलना हुआ और वैसे ही घोड़े पर बैठा हुआ सामने से आता दिखाई दिया, तब की बार तो पास पहुंच के और कहा कि आज तो न जाने दूंगा, तुम उस दिन जो है मुझसे बिना बोले चले गए थे, ये तो कहो कि तुम मेरे मित्र हो कि नहीं। ऐसा सुनते ही वो डाकू बन गया जो मित्र था, वो क्षण भर को ठहरा और उसे प्रणाम करके आगे चला गया। फिर भी बात नहीं बनी, अब क्या करूं, इतना समय व्यतीत हो गया, ये मेरी बात को सुनता तो है, पिछली बार तो ऐसे ही चला गया था, इस बार सुनी, मुझे प्रणाम भी किया, लेकिन रुका नहीं, अगली बार तो मिलेगा तो अब जाने नहीं दूंगा। तो अगली बार फिर से अवसर मिला तो घोड़े पर बैठे देख करके उसके पैरों से लिपट गया, तू मेरा मित्र है, ऐसी अवस्था में तुझे देखकर मुझे बहुत दुख होता है, और आंखों से आंसू टपकने लगे उस साधु के जिसका कि मित्र डाकू हो गया था। अब तो नहीं रहा गया, उससे घोड़े से नीचे उतरा और साधु के अपने मित्र के ही चरणों में झुक करके प्रणाम किया और कहा कि कहो मेरे लिए क्या कहते हो, जो कहोगे सब करूंगा। तो पहले क्यों नहीं माना था, बोले तुम्हारे अंदर पहले मुझे बदलने की भावना तो थी लेकिन अहंकार था इसलिए निकल गया था, दूसरी बार तुम्हारे मन में फिर भी मित्रता का तकाजा था फिर भी मैं तुम्हें प्रणाम करके निकल गया था, तीसरी बार तो तुम्हारे मन में मेरे जीवन को पतित होते देखकर अत्यंत पीड़ा थी इसलिए मैं रुक गया। में तुम जो कहोगे वो करूंगा। भैया दूसरे की सेवा करने से पहले अपने मन में उसके प्रति ऐसा ही भाव होना चाहिए कि यह शरीर से रुग्ण हो या कि मन से रुग्ण हो, विकारों से ग्रसित हो, मैं इसकी इस पीड़ा को देखकर भीतर ही भीतर स्वयं भी पीड़ित हूं, क्या करूं कैसे करूं जिससे कि इसकी पीड़ा को दूर कर दूं, ऐसा भाव जिसके भीतर उठता है वास्तव में वही सेवा के द्वारा अपने और दूसरे का कल्याण करता है। इसी भावना के साथ कि हमें ऐसी भैया वृत्ति की भावना उत्पन्न हो।
बोली आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि
के गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
जब जग विषयों में रच पच कर दाखिले दाने सुता हूँ,
अथवा शिव के निष्कंटक पथ में निष्कंटक होता
हूँ, अर्ध निशा सन्नाटा
I'm
दान करूं तेरा इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा मुझे सपनों में रहो मेरे मन मंदिर में तुम भक्ति भरपूर भरो, भक्ति भरपूर भरो, तेरी ज्योति जगे मन में, नित ध्यान धरो तेरा इस बालक के सिर पे, गुरु साथ रहे तेरा, मुझे सावर दे दे, गुणगान करूं तेरा इस बालक के सिर पे, रहे तेरा मुझे सावर दे दे। दर्शन दो दर्शन दो, दर्शन दो, आ दर्श दिखा दे गुरुदेव, आ दर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, आ दर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, दर्श दिखा दे गुरुदेव। अब तो दर्श दिखा दे, कब से खड़े हैं दर पर तेरे, मन की प्यास बुझा दे, तेरी लीला निराली गुरुदेव, तेरी लीला निराली गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, आ दर्श दिखा दे गुरुदेव। भवर में नैया पड़ी है, आकर तू पार लगा दे, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, आकर गले से लगा ले, क्यों दे लगाते गुरुदेव, देर लगाते गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, ओ तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे बगिया जीवन की मन की कली मुरझाई करे विनती ये बालक आज करे विनती ये बालक आज तुझे तेरे लाल बुलाते हैं तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन तुझे तेरे लाल बुलाते हैं आ दर्श दिखा दे गुरुदेव मन में हमारे आंखें नहीं मानती है पल गुरु से ये अब भी छुड़ कर रहना नहीं चाहती है पर बस बरसाए नीर बस बरसाए नीर तुझे तेरे लाल बुलाते हैं तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन वो तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन तुझे तेरे लाल बुलाते हैं आदर्श दिखा दे गुरुदेव तुझे तेरे लाल बुलाते हैं आदेव तुझे तेरे लाल बुलाते हैं तुझे तेरे लाल बुलाते हैं तुझे तेरे लाल बुलाते हैं
शक्ति से ओत प्रोत विद्या और ज्ञान से भर दो गुरुवर ऐसा वर दो आत्मशक्ति से ओत प्रोत विद्या और ज्ञान से भर दो गुरुवर ऐसा वर दो रहे मनोबल अचल मेरू का तनिक नहीं घबराऊं प्रबल आंधियां रोक सके ना आगे बढ़ता जाऊं रहे मनोबल अचल मेरू का तनिक नहीं घबराऊं प्रबल आंधियां रोक सके ना आगे बढ़ता जाऊं उड़ जाऊं निर्बाध लक्ष्य तक गुरुवर ऐसे पर दो गुरुवर ऐसा वर दो है अज्ञान निशान दिया मन जो तिर में कर दो, मन जो तिर में कर दो। सुजस सुख संप्रतिदाता हे गुरुवर अपना लो, संत समागम चाहूं मैं मुझे अपने पास बिठा लो। सुमति सुजस सुख संप्रतिदाता हे गुरुवर अपना लो, संत समागम मुझे अपने पास बिठा लो। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, हाथ दया का धर दो।